हमारे बीच में आज बहुत ही स्नेही आदरणीय जयंती बहन हैं, जो हमें एक बहुत गहरी क्लास कराने वाले हैं। हम एक हाथ की ताली से आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आपने बहुत ही अल्प आयु में, जब आप फोर्थ क्लास में पढ़ते थे, तब से ये ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किया। आपका लौकिक परिवार भी बाबा के ईश्वरीय कार्य में संपूर्ण रूप से सहयोगी है और ये ज्ञान आपने ओखला महाराष्ट्र से प्राप्त किया। आपने बीकॉम करने के बाद पिछले करीब 30 वर्षों से भी अधिक समय से संपूर्ण रूप से समर्पित होकर ईश्वरीय सेवाओं में अपना जीवन समर्पित कर दिया। बाबा के यज्ञ की हर प्रकार की सेवा आप बहुत ही स्नेह से, बहुत ही दिल से करते हैं और अनेकों को आप समान बनाने की सेवा करते रहे हैं। वर्तमान समय आप जयपुर बापूनगर और उसके आसपास के सेवा केंद्रों का कुशल संचालन कर रहे हैं। आपका विशेषता यह है कि आपका ये अलौकिक नाम स्वयं दादी प्रकाशमणि ने दिया था, तो हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक भाग्य का आधार श्रेष्ठ कर्म, इसके बारे में इसके बहुत गुह्य रतन हमें प्राप्त होंगे। आपके लिए दो लाइन कहना चाहेंगे हम। आपकी सोच में आत्मसम्मान की महक है। आपकी सोच में आत्मसम्मान की महक है। आपके इरादों में हौसले की मिठास है। आपकी नियत में सच्चाई का स्वाद है। इसलिए आपकी पूरी जिंदगी ही महकता हुआ गुलाब है। बहुत
ओम शांति। भाग्य विधाता शिव बाबा ने हम सब आत्माओं को भाग्य बनाने की कलम दी है। भाग्य विधाता बाबा हम सबका भाग्य बनाने की विधि हमें बताते हैं और वह विधि साधारण नहीं है, इसीलिए भाग्य भी साधारण नहीं है। सर्वोच्च भाग्य है हमारा, क्योंकि सर्वोच्च पिता जो स्वयं भाग्य विधाता है, वो हमें भाग्य बनाना सिखा रहे हैं। और ऐसा श्रेष्ठ भाग्य हम कैसे बनाएं? नित्य बाबा हमें उसका मार्गदर्शन करते हैं। हम वैसे देखो तो भाग्यवान सब है ही। द्वापर युग से हम सब मनुष्यात्माओं ने कई ऐसे कर्म किए जो कि विकर्म कहलाए। विकारों के वशीभूत होकर, देह अभिमान में आकर अनेक मनुष्यात्माओं के साथ हमारे हिसाब किताब जुड़े। प्लस माइनस कुछ अच्छे कर्म भी हम करते रहे, पर कर्म का ज्ञान हमें नहीं था, इसीलिए अच्छे कर्म भी हमने किए लेकिन उसमें भी हमें देह अभिमान रहा, क्योंकि आत्मा का ज्ञान हमारे पास नहीं था। हम तो सारा टाइम अपने आप को देह ही समझते रहे और इसीलिए हमने दुनिया के हिसाब से कर्म अच्छे किए भी, लेकिन वो कर्म भी हमारे अच्छे नहीं लेकिन माइनस में ही चले गए। और इसीलिए प्लस माइनस करते करते हम जब संगम युग में आए तो फिर भी हमारे कुछ अच्छे कर्म तो थे, जिस कारण हमें बाबा मिला। क्योंकि बाबा मिलना ये अपने आप में एक भाग्य है। बाबा मिला, बाबा का ज्ञान मिला, ऊंच पिता से ऊंची नॉलेज हमें मिली, इसीलिए हमारा भाग्य था जो हम बाबा के बने। और अहो सौभाग्य जो हम इस आज मधुबन भूमि पर आए हैं और वो भी प्यारे बाबा की शिव जयंती मनाने के समय पे हमें सबको ये अवसर मिला है, जो हम इस बाबा की श्रेष्ठ भूमि तपस्या भूमि पर आज हम सब ब्राह्मण आत्माओं के कदम पड़े, तो इसीलिए हम भाग्यवान है जो हमने बाबा को पहचाना, हम भाग्यवान है जो हम मधुबन धरती पर आए, हम भाग्यवान है जो हमें दादियों की दीदियों की इतनी अच्छी पालना मिलती, ब्रह्मा भोजन मिलता। तो बाबा कहते कि हो ही आप दैवी कुल की आत्माएं, देव कुल की आत्माएं। जो भी हम बैठे हैं, हम सब आत्माएं साधारण नहीं है, बाबा ने हमें चुना है, इसका मतलब हम कल्प पहले वाली सतयुगी आत्माएं हैं। जन्म मरण के चक्र में आते आते हम सब के ऊपर कहीं न कहीं मैल, कहीं न कहीं धूल तो जम गई, कोई न कोई संस्कार, कोई न कोई विकारों के वशीभूत तो हम हो गए, लेकिन फिर भी बाबा कहते आपका आदि स्वरूप तो कौन सा है, देव स्वरूप है। भले हम नीचे उतरते आए, लेकिन फिर भी ये हमारा अंतिम जन्म है, फिर भी इस अंतिम जन्म में भी हमारे में कुछ ऐसे गुण थे, कुछ ऐसे अच्छे कर्म थे, जिस कारण बाबा ने हम सबको अपना राइट हैंड बनाया, या हमें उस सतयुगी नव निर्माण के कार्य के लिए मददगार बनाया, हम कुछ काम आ गए परमात्मा के, हमें भाग्य मिला जो हम उस परमात्मा की सेवा करें, हमें भाग्य मिला हम उस परमात्मा के इस महान और ऊंच कार्य में कहीं न कहीं अपने गुण विशेषताओं से सहयोगी बने। इसीलिए भले अंतिम जन्म है, इस अंतिम जन्म में भी हम आत्माएं विशेष है, क्योंकि प्रभु की नजर हम पर पड़ी, उस प्यारे बाबा की नजर हम पे पड़ी, और इसीलिए आज हम बाबा के घर में बैठे हैं। हम भाग्यवान तो है, लेकिन अब बाबा कहते कि जो भी मैल है, जो भी कुछ विकार आए हैं, कड़े संस्कार है, उन्हें भी हटा दो और पुनः अपने उस आदि स्वरूप को जागृत करो। हम ही वो सतयुगी देव आत्माएं हैं, और उस बुराइयों को, नेगेटिविटी को हटाने के लिए और अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए बाबा ने हमें कई ज्ञान के रहस्य बताए, और उनमें से एक बहुत ही गुह्य रहस्य है, कर्मों का गुह्य गति क्या है। हम सब वो आत्माएं बैठी है यहाँ जिन्होंने बाबा को पहचाना, न केवल पहचाना, अपना बना लिया, अपना बना के मुख से आवाज निकला मेरा बाबा, और जिस दिन से हमने कहा मेरा बाबा, हमारा रिश्ता शिव बाबा से जुड़ गया और हम बाबा के बच्चे बन गए। पहले सब कौन थे, भगत थे ना, भगत से बाबा ने हमें बच्चा बना दिया। हम मांग रहे थे सुख दो, शांति दो, खुशी दो, ये दो, वो दो, लेकिन अब बाबा ने हमें कहा मांगने से मरना भला, तो बाबा ने कहा मांगो मत, भिखारी नहीं अधिकारी बनो। तो बाबा ने हमें अपना बच्चा बना लिया, बच्चा माना वारिस, अधिकारी, तो हम बाबा के अधिकारी बच्चे बन गए। तो अधिकारी माना बाबा के सपूत बच्चे, जो बाबा के वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। तो ऐसे हम आत्माएं, विशेष आत्माएं, तो बाबा ने हमें कर्मों का ज्ञान दिया, कर्मों की गुह्य गति का राज बताया। जिस दिन से बाबा मिला, उसी दिन से हमारे कर्मों में परिवर्तन आने लगा। आया सबका नंबर वार, पर परिवर्तन आने लगा, उसका आधार है सत्य ज्ञान। जब हमें पहले ही दिन बाबा के घर में गए, तो बाबा ने हमें ज्ञान दिया। सबसे पहले दिन हम जाते हैं तो बाबा कहते आप एक शुद्ध आत्मा है, न कि शरीर। सारा दिन हम मैं और मेरा कह रहे थे, लेकिन बाबा ने हमें कहा कि मैं कौन हूं। और मेरा क्या है, मैं कौन और मेरा कौन। दादी जानकी जी भी हमेशा यही कहती थी। और ये सबसे पहला पाठ हमें बाबा ने कहा जिस दिन से आत्मस्मृति दिलाई। तो जब हमें आत्मा का ज्ञान मिला तो हमारा सोच, हमारी भावनाएं बदलने लगी। पहले हम कहते थे ये मेरी है, ये मेरा है। अब मन में आया ये सब मनुष्य आत्माएं हैं, ये सब बाबा के बच्चे हैं। फिर बाबा ने हमें और ज्ञान दिया कि ये सब भिन्न भिन्न हैं। आत्माएं तो सब परमात्मा की संतान है, पर हर एक आत्मा के अपने अपने स्वभाव संस्कार है, हर एक आत्मा की अपने अपने कर्मों का हिसाब किताब है। यूं कहे सबकी अपनी अपनी कर्म कहानी है। द्वापर युग से जो कर्म हमने के हिसाब हमारे जुड़ गए वो सब अपनी अपनी कर्म कहानी है। हर एक आत्मा इस कर्म के वशीभूत होकर अपने अपने कर्म के हिसाब किताब चुकतू करता है। बाबा ने कहा ये कर्म क्षेत्र है, इस कर्म क्षेत्र पे जो भी बोएंगे वो हमें मिलेगा। जब ये ज्ञान हमें मिला, आत्मा का पाठ जब बाबा ने हमें बताया, तो आत्मिक दृष्टि देही अभिमानी बनकर जो कर्म हम करने लगते हैं, वो कर्म हमारे कौन से कर्म है। जब हम स्वयं को आत्मा समझकर परम पिता परमात्मा की याद में कर्म करते, वो हमारे कौन से कर्म है, कौन से कर्म है, सत्कर्म है। तो बाबा हमें सत्कर्म करने का ज्ञान देते हैं। देखो सारे युगों में हम सत्कर्म नहीं कर पाते, सतयुग में हमारे कर्म अकर्म होते, जिसका कोई खाता नहीं बनता, जो न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि पुण्याई का बल हमारे पास होता है और वहां कोई विषय विकार नहीं होता है, न काम न क्रोध न लोभ न मोह न अभिमान न देह अभिमान। तो हमारे कर्म वहां गुणों से भरे हुए श्रेष्ठ होते हैं, जिसका कोई खाता नहीं बनता, पाप नहीं बनता, इसीलिए वो कर्म अकर्म कहलाते हैं। और जो हमने संगम युग में जमा किया हुआ है पुरुषार्थ से अपनी प्रालब्ध, वो प्रालब्ध हम वहां भोगते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे हम द्वापर युग में आते हैं तो हमारे कर्म बिगड़ने लगते हैं। उसका कारण है हमारे भीतर माया रावण की प्रवेशता होती है, देह अभिमान आता है, और देह अभिमान में हम जो भी कर्म करते हैं फिर वो कर्म हमारे विकर्म बनते जाते, और ऐसे विकर्म बनते बनते हम सब फिर अंतिम जन्म कलयुग में आते। लेकिन हम है तो सतयुग की आत्माएं, संग के रंग में आकर, संग दोष में आकर, माया के रंग में आकर हमारी आत्मा के अंदर कई कड़े संस्कार विकर्म आए। अब बाबा हमें उसे भस्म करने की विधि बताते हैं। उसके लिए ज्ञान बल, सेवा का बल, दुआओं का बल, मुरली का चिंतन, ये सब बाबा हमें रोज खजाने देते, विधि बताते, जिससे हम अपने पास्ट विकर्मों का विनाश करें और भविष्य के लिए पुण्य जमा करें। देखो हमें इतनी कमाई करनी है, पुण्य की कमाई, जो वर्तमान भी हमारा सही रहे, वर्तमान में भी हमारा प्रेजेंट में जो कर्म है वो भी सुखदायी रहे, अच्छा रहे, और जो पास्ट है जो हमसे भूले हुई, चाहे अनजाने में हुई, क्योंकि अनजाने में की हुई भूल का भी कर्म का भी हिसाब तो बनता ही है, क्योंकि कर्म तो किया चाहे भूल से किया। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जो भी कर्म हम करते हैं उसका फल तो हम सबको मिलता है। तो देह भान में हमने कर्म किए वो विकर्म बने, अब उससे हमें पास्ट में जो भी विकर्म है, जिसको बाबा कहते हैं जो भी हमारे पाप हुए, उसे हमें बाबा की याद से क्या करना है, दग्ध करना है, वर्तमान में भी हमें चलना है, भूले नहीं करनी है, अपना खाता अच्छा रखना और भविष्य के लिए भी हमें कमाई करनी है। जितनी कमाई होगी उतना हमारा पद ऊंचा होगा। तो बाबा ने हमें ज्ञान की समझ दी, सबसे पहले आत्मा का ज्ञान दिया। ये समझ जैसे जैसे हमें समझ आती जाती, अभी बाबा ने कुछ दिन पहले कहा समझ आती जाती, समझ समझ के समझदार बन जाते। और सबसे ज्यादा समझदार कौन है? जो हमारा एम ऑब्जेक्ट है, नर ऐसी करनी करे श्री नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे श्री लक्ष्मी बने। साधारण नर नारायण बन जाए, साधारण नारी लक्ष्मी बन जाए, बस बीच में कौन सा शब्द है? ऐसे कर्म। और कौन से कर्म हैं जिस कर्म से मनुष्य नारायण बन गया, नारी लक्ष्मी बन गई? वो कर्म बाबा हमें संगम युग में सिखाते, जो सत कर्म होते हैं। और सत कर्म हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास सत्य बाबा का सत्य ज्ञान है। जैसे जैसे ज्ञान का चिंतन करते, मुरली सुनते या मुरली पढ़ते, मुरली की कोई पॉइंट लेकर उस पे मनन चिंतन करते, ज्ञान के रत्नों का चिंतन करते हैं, तो जैसे हमारे भीतर ज्ञान भरता जाता, ज्ञान की समझ आती जाती, अपने आप हमारे कर्म अच्छे बनते जाते, अच्छे कर्म। जैसे हमें ज्ञान मिला अशुद्ध भोजन नहीं करना है, जब ज्ञान नहीं मिला था, जब हमें बाबा नहीं मिला था तो खान पान कईयों का अशुद्ध होगा, लेकिन बाबा के घर में आई, बाबा ने कहा कि अशुद्ध भोजन नहीं करना है, अन्न का असर मन पे पड़ता है, बाहर का नहीं खाना है। तो अब ये समझ हमें आई, और जब समझ हमें आई, बाबा को याद हमने किया, महसूसता आई, तो हमने क्या किया? अशुद्ध भोजन का त्याग कर दिया और संकल्प लिया, नहीं, बाबा की मैं आज्ञाकारी संतान, अब मुझे शुद्ध भोजन, बाबा की याद में बना हुआ भोजन ही ग्रहण करना है। ये मुझे समझ आई, समझ आने के बाद धारणा हुई, और उसके लिए शक्ति ताकत कहाँ से मिली? बाबा से। योग से हमें ताकत मिलती है, ज्ञान से हमें समझ आती है। तो बाबा हमें समझ देकर समझदार बनाते, और एक तरफ योग से शक्ति भरते, क्योंकि हमारा कनेक्शन डायरेक्ट पावर हाउस से है, हमें स्वयं बाबा मिला है। तो बाबा को जब हम याद करते हैं तो याद में शक्ति है, बुराइयों को जीतने के लिए भी शक्ति चाहिए। आप देखेंगे दुनिया में कितने लोग व्यसन आदि करते हैं, वो नहीं, उनका नहीं छूट पाता, पर बाबा के घर में आते हैं तो उन्हें शक्ति मिलती है, दुआएं मिलती है, और उनकी कमियां मिटती जाती है। कितना भी कड़ा व्यसन है, अगर कोई रोज बाबा को याद करे, मुरली सुने, तो उसके जीवन में परिवर्तन आता है। तो योग की शक्ति हमें बाबा देते, जिससे हमारे कर्म में श्रेष्ठता आती है। हम सारा दिन कर्म करते हैं, हमें अपने कर्मों पर अटेंशन देने से हमारा पुण्य जमा होता। जैसे बोलना कर्म है, देखना कर्म है, चलना कर्म है, लेकिन बाबा ने कहा हमें सोचना भी कर्म है। अब मुख से तो मैंने मीठा बोला, पर सोच में भी मेरा मीठापन हो, नहीं तो दिखाई तो दे रहा बाहर से बोल बहुत मीठा है, लेकिन भीतर के वाइब्रेशन भी अच्छे हो। तो बाबा ने हमें कर्मों के गुह्य गति बताई। जैसे बोलने से हिसाब जुड़ता है, वैसे संकल्पों से भी हिसाब जुड़ता है। इसलिए बाबा कहते कि कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है, उसके लिए हमारे सोच को भी हमें ऊंचा बनाना है, और हमारा संकल्प हमारा सोच ऊंचा तभी होगा जब हमारे पास बाबा का ज्ञान अर्थात नित्य हम मुरली का चिंतन करते, ज्ञान का मनन चिंतन करते। अमृत वेला उठकर बाबा से शक्ति मिलती है, उसके बाद हम बाबा की मुरली सुनते हैं, सारा दिन हम कर्म करते हैं, क्योंकि बाबा ने हमें टाइटल कौन सा दिया है कि आप कर्म योगी हो। बाबा ने कर्म सन्यासी नहीं बनाया, हम कर्म योगी है। बाबा कहते कर्म सन्यास अक्षर ही रॉन्ग है। जिस दिन हम संसार में आए, हमारा जन्म हुआ, उसी दिन से कर्मेंद्रिया हमें मिली, उसी दिन से कर्म शुरू हो गए। लेकिन वो कर्म श्रेष्ठ कैसे बने, ये ज्ञान हमें बाबा देते। इसीलिए बाबा कहते जो भी कर्म सारा दिन करते हो, तो बाबा की श्रीमत है, जो भी कर्म करते हो बाबा की याद में करो। और क्या कहते बाबा, ट्रस्टी होकर करो, मेरा मेरा नहीं, पर सब कुछ बाबा का समझकर करो। परिवार में रहते हो, रहना परिवार में है, पर बाबा ने परिवार में रहने के लिए क्या कहा हमें, कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे। कीचड़ में रहते हुए भी न्यारे और प्यारे, कमल पुष्प समान। तो श्रीमत पर हम जब चलते हैं, बाबा के आज्ञाकारी बनते हैं, तो हमारे कर्म सुकर्म सत्कर्म बनते जाते। सारा दिन हम घर में रहते हैं, अब माताएं हैं खाना भी बनाएंगी, सफाई भी करेंगी, भाई है दुकान जाएंगे, ऑफिस जाएंगे, अपना बिजनेस करेंगे, सभी कर्म करते हैं। लेकिन वही कर्म जब हम बाबा के बनते हैं, तो हमारे सुकर्म कैसे बनते, क्योंकि हर कर्म करते हैं तो बाबा की याद में करते हैं। चाहे छोटा सा कर्म है, सफाई कर रहे, साधारण है, सभी करते हैं, लेकिन वो करते हुए प्लस बाबा की याद है, तो अब वो कर्म मेरा साधारण नहीं है, अब वो मेरा सुकर्म हो गया, सत्कर्म हो गया, क्योंकि कर्म में बाबा की याद आ गई। और श्रेष्ठ भाग्य बनाने के लिए सबसे अच्छी बात है, अपना सब कुछ ईश्वर को सौंप दो। जब हम सब कुछ प्रभु अर्पण करते हैं, चाहे हमें संसार में कुछ मिल भी रहा, जो भी कुछ है, ये सब बाबा का है। कोई विशेषता है हमारे भीतर, वो भी बाबा ने भरी है, उस विशेषता का भी अभिमान ना आए, क्योंकि बाबा कहते ये भी प्रभु की देन है। जब हम हर बात को प्रभु अर्पण करते हैं, तो हम निश्चिंत हो जाते और हमारा भाग्य बनता जाता, क्योंकि अब हमारा जिम्मेवार भाग्य विधाता है। जैसे देखो महाभारत में कहानी है ना, कि द्रौपदी जब थी, तो जब उसका वस्त्र हरण किया, तो वहां बड़े बड़े बैठे थे, भीष्म पितामह दुशासन पांडव पांचों थे, लेकिन द्रौपदी ने क्या किया, द्रौपदी ने चिल्लाया नहीं, पहले सबने देखा वो चिल्लाई नहीं, उसने क्या किया, भगवान को याद किया, श्री कृष्ण को आवाहन किया, और जब उसने पुकारा तो उसको मदद मिली। ये भी तो हो सकता था कि भगवान दुशासन को ही ठीक कर देता और सबको ही ठीक कर देता, पर ऐसा नहीं किया, उसने पुकारा, उसको मदद की। इस दुनिया में भी विघ्न है, कई गलत लोग हैं, बहुत कुछ है, हम कहेंगे भगवान जी इनको ठीक करो, इनको ठीक करो, नहीं, हम बाबा को याद करते हैं। जब हम बाबा को याद करते, तो बाबा हमें चलना सिखाते हैं, बाबा हमें मदद करते। बाबा ने आज भी कहा, जो मुझे याद करते हैं उन्हें मैं भी याद करता हूँ, उन्हें मदद भी देता हूँ। तो कोई भी विघ्न है, परिस्थिति है, हम बाबा को साथ रखते हैं, तो बाबा की मदद मिलती है, और बाबा की मदद मिलने से हमारे कर्म में श्रेष्ठता आती है। सेवा का बल, जब हम अनेक आत्माओं को बाबा का संदेश देते हैं, ज्ञान देते हैं, सेवा करते हैं, चाहे वाचा कर्मणा मनसा सेवा जो भी करते हैं उससे हमें दुआएं मिलती है। और ये दुआएं हमें कई बार ऐसे समय मदद करती है, कई बार कोई विघ्न आता है, कोई बात आती है, तो हमें उस समय सबका सहयोग मिल जाता है। ये हमारी दुआएं हैं जो हमें मदद करती है। तो बाबा हमें दुआओं का खाता कैसे जमा करे, पुण्य कैसे जमा करे, ये विधि भी बताते हैं। और कर्म में श्रेष्ठता कैसे लाए, हम सदा ध्यान रखें हमसे कोई कर्म ऐसा न हो जो किसी को दुख पहुंचे। अटेंशन तो रख सकते, और जब हम ये अटेंशन रखते हैं कि हमें सबको सुखी देना है, ये कर्म करते हैं सुख देने का, तो भी हमारा भाग्य बनता जाता है। क्योंकि हम सदा ये ध्यान रखते कि हमें बाबा देख रहा है, चाहे कहीं भी हो। बाबा क्या कहते, हर एक आत्मा हीरो एक्टर है, और हीरो एक्टर पे सबकी नजर होती है ना, तो हमें बाबा देख रहे हैं। एक बार की बात है, एक गुरु थे, गुरुजी थे, गुरु थे, और उनके चार शिष्य थे। अब गुरुजी बुजुर्ग हो गए, उनको लगा अब ये सारा कारोबार किसी न किसी शिष्य को संभालना पड़ेगा, देना पड़ेगा मुझे। तो उन्होंने परीक्षा ली, चारों शिष्यों को बुलाया और उन्हें कहा कि एक कबूतर मैं आपको देता हूं। एक कबूतर दिया और बोला, इस कबूतर को ऐसी जगह जाके मार देना जहां कोई नहीं हो, पंछी भी न हो, कोई मनुष्य भी न हो, ऐसी जगह जाकर इसे मार देना और फिर ले आना दूसरे दिन। अब गुरुजी ने आज्ञा दी। अब उसमें से जो तीन शिष्य थे वो ऐसे कहीं गए, जंगल में गए, कहीं गए, और उन्होंने देखा यहाँ पंछी भी नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई मनुष्य भी नहीं है। उन्होंने उस कबूतर को मारा और तीनों शिष्य कबूतर को लेके गुरु के पास आ गए दूसरे दिन। पर एक शिष्य था वो आया ही नहीं। उन दोनों को लगा, ये उन तीनों को लगा कि ये आया ही नहीं है। गुरुजी तो समझ गए थे। चार दिन बाद वो चौथा शिष्य आया और जिंदा कबूतर ही ले आया। तो गुरुजी ने कहा उसे मारना था। तो बोले, गुरुजी आपने कहा था कि जहां कोई नहीं, पंछी नहीं, मनुष्य नहीं, कोई नहीं, ऐसी जगह तो मुझे मिली नहीं। मैं तो सारी जगह ढूंढता रहा पर ऐसी जगह कोई मुझे मिली नहीं, क्योंकि मुझे सदा याद था कि कोई नहीं पर भगवान तो मुझे देख रहा है। मैं ऐसे पाप कर्म कैसे करूं? कबूतर को मारना तो पाप कर्म है। आपने तो कहा था पर मैं नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे सदा ध्यान था कि भगवान मुझे देख रहा है, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूं, इसलिए गुरुजी मैं नहीं मार पाया जिंदा। गुरुजी ने कहा, तीनों शिष्य तो हंसने लगे। गुरुजी ने कहा, यही मेरा सच्चा शिष्य है और इसी को मैं आगे अपना सब कुछ जिम्मेवार बनाऊंगा। मतलब हम कहीं भी रहे लेकिन सदा ये बुद्धि में रहे कि भगवान मुझे देख रहा है। और हमें तो ये भी पता है कि बाबा हमारा बाबा तो है, पर साथ में कौन है? धर्मराज भी है। एक का 100 गुना मिलता है। अगर ये बात हमें याद रखे तो हमारे कर्म सदा अच्छे बनते रहेंगे। कई बार हम ऐसा करते हैं, हम किसी को मदद करते हैं, किसी को आवश्यकता है, हम मदद करते हैं। अब हम मदद करते तो हमारे मन में ये भाव होता है कि अब हम इसे इतनी हेल्प कर रहे, मदद कर रहे, ये भी तो हमें करे। या हम सोचते हमने इतनी की है तो ये भी तो हमें कुछ मदद करे, या हमारा समय आएगा तो ये भी हमें मदद करे। लेकिन बाबा क्या कहते? बाबा कहते, उसे जरूरत है, आपने उसे मदद की, वो आपको मदद करे ये मत सोचो। अगर हम ये सोचते हमने की वो भी करे तो ये तो सौदा हो गया, व्यापार हो गया। तो बाबा ने हमें कहा कि कि आप मदद करते रहो, उससे आवश्यकता है, जरूरत है, करो। आपके ऊपर कोई बात आएगी तो आपको कहीं और से भी मदद मिल जाएगी, क्योंकि आपने अच्छे कर्म किए, आपने अच्छे बीज डाले तो आपको फल तो मिलेगा। जो भी कर्म हम करते हैं निस्वार्थ भाव से करते हैं तो हमें उसका अच्छा फल मिलता है। अगर स्वार्थ रखते हैं तो वो कर्म हमारा श्रेष्ठ नहीं बनता, जिससे हमारा भाग्य नहीं बनता। तो बाबा ने हमें ये कहा, हर कर्म करो ट्रस्टी बनकर, निमित्त बनकर, हर कर्म करो निस्वार्थ भाव से, क्योंकि आप भगवान के बच्चे हो। अगर स्वार्थ रखते हैं तो वो बीज सही नहीं है। इसीलिए देखो, हर चीज का सीजन होता है और सीजन का फल मीठा होता है। तो आज कौन सा सीजन चल रहा है? संगम युग श्रेष्ठ कर्मों के बीज बोने का समय है। ये सीजन चल रहा है भाग्य बनाने का, ये सीजन चल रहा है श्रेष्ठ कर्म के बीज बोने का। अगर हम अभी संगम युग में श्रेष्ठ कर्म के बीज बोएंगे तो हमें सारे कल्प में भी मिलता रहेगा। सत्युग त्रेता युग में तो मिलेगा ही, लेकिन लास्ट जन्म में भी हमारे कर्म अच्छे हैं जो हमें बाबा मिला, क्योंकि हम सब ने संगम युग में बीज बोए हैं। बाबा कहते तन मन धन सब लगाओ, क्योंकि सबका बीज बोना चाहिए। हमें हर प्रकार की सेवा करनी है, क्योंकि हमें तन भी सुखी चाहिए, मन भी अच्छा चाहिए, धन भी चाहिए, हेल्थ वेल्थ हैप्पी सब कुछ चाहिए। तो हमें हर सेवा का बीज बोना होगा तो हमें उसका भाग्य मिलेगा। और बाबा हमें मुरली में ये रोज बताते हैं कि कैसे हमें श्रेष्ठ कर्मों के बीज बोना है। इस संसार में आज अपन देखते हैं कि जो भी देहधारी है देह को देखते हैं, लेकिन बाबा ने हमें कहा कि सुंदर वो है जिसके कर्म सुंदर है। क्योंकि बाबा ने हमें पहले दिन ही कहा कि देह को नहीं देखना है, चमड़ी को नहीं देखना है, आत्मा को देखना है। और हर एक आत्मा शिव बाबा की संतान है, और जब हम इस दृष्टि से देखते हैं तो हमारे कर्म अच्छे बनते जाएंगे, क्योंकि शुभ भाव आएगा, ईर्ष्या घृणा का भाव समाप्त हो जाएगा। इसलिए बाबा रोज ही कहते हैं आत्म अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो, क्योंकि देह को देखना बाबा कहते पाप है, आत्मा को देखना ही सत्यता है, सत्य आत्मा है, देह को देखना झूठ है। तो बाबा ने हमें कहा कि सबसे पहले दिन आत्मा को देखना है, हमारे कर्म को श्रेष्ठ बनाना है तो आत्मिक दृष्टि रखना है। एक छोटा सा दृष्टांत है, एक प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात थे। सुकरात का नाम कईयों ने सुना होगा, जो बड़े कुरूप थे, बदसूरत थे। तो एक बार वो एक शीतल पेड़ की छाया में बैठे थे, बड़ा अच्छा दृष्टांत है। और एक शीशा आईना उनके हाथ में था और वो आईने में अपने को निहार रहे थे, और उनका शिष्य पास में ही खड़ा था। उसने देखा कि सुकरात आईने में अपना चेहरा निहार रहे हैं अपने गुरु, क्योंकि वो कुरूप थे। तो उसको हंसी आई कि कुरूप है फिर भी आईने में अपने को निहारे, उसको हंसी आई। सुकरात ने देख लिया, उन्होंने कहा कि हे शिष्य तुम क्यों हंसे? वो कुछ नहीं बोला, चुप रहा। बोले नहीं बताओ क्यों हंसे? तो उसने बोला कि आपका तो आप तो ऐसे कुरूप है, फिर भी आप अपने आप को आईने में क्यों निहार रहे हो? तो सुकरात ने जवाब दिया, मैं आईने में इसलिए निहार रहा हूं और इसलिए रोज निहारता हूं, देखता हूं कि मैं ऐसे कौन से अच्छे भले कर्म करूं जो मेरी ये बदसूरती छिप जाए, मेरा ये कुरूपपना छिप जाए। मैं संसार में ऐसे कौन से भले अच्छे अच्छे कर्म करूं जो मेरी ये बदसूरती छिप जाए। शिष्य को बड़ा लगा, तो शिष्य ने कहा, इसका मतलब है कि जो खूबसूरत है उन्हें शीशा नहीं देखना, आईना नहीं निहारना चाहिए। उन्होंने कहा, नहीं, उन्हें भी आईने में देखना चाहिए, इसीलिए कि ये खूबसूरती कायम रहे, उसके लिए मैं अच्छे गुणवान बनूं और अच्छे कर्म करूं, सदा अच्छे कर्म करूं, तो ये जो मेरी खूबसूरती कायम रहे, नहीं तो विकार विषय विकार आने से ये सब क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएगी। तो खूबसूरत है उसे ये ध्यान रखना चाहिए कि हमसे कोई गलत कर्म न हो। तो शिष्य नतमस्तक हो गया, क्योंकि सुंदर वो है जिसके कर्म सुंदर है। कोई कितना भी सुंदर हो, कर्म उसके खराब है तो कोई सुंदर नहीं। तो बाबा ने हमें कर्मों की सुंदरता बताई है और आत्मा की सुंदरता सिखाई है, क्योंकि बाबा कहते देह को नहीं देखना है, बाबा कहते आत्मा को ही देखना है। इसीलिए ऐसे कर्मों की गुह्य गति का दाता शिव बाबा हमें सुबह से लेकर रात्रि तक श्रेष्ठ कर्म करना सिखाते हैं। जीवन में सफलता भी चाहिए तो उसके लिए भी श्रेष्ठ कर्म, ऊंचे कर्म करने से ही सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि जब तक कर्म अच्छे न हो तब तक हमारे जीवन में भी सुख शांति नहीं है। तो बाबा हमें सवेरे से लेकर हर कर्म शुद्ध कैसे बनाए, सोए कैसे, जगे कैसे, हर कर्म बाबा हमें सिखाते हैं, श्रीमत देते हैं, हम उस श्रीमत पर चलकर अपने भाग्य को बनाते हैं। जैसे बाबा कहते कि भाग्य विधाता बाबा ने हमें भाग्य दिया, और भाग्य की तीन निशानी है, ताज, तिलक और तखत। ये तीन निशानी है भाग्य की। तो बाबा ने हमें संगम युग में ताज दिया, बताओ कौन सा संगम युग का ताज कौन सा है? पवित्रता का, और विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताज। यज्ञ की कोई भी जिम्मेवारी लो, छोटी बड़ी उससे कोई बात नहीं, जो मिले। जब हम संगम युग में जिम्मेवारी का ताज, तिलक, तिलक कौन सा दिया बाबा ने हमें? आत्मस्मृति का तिलक, आत्मा समझकर आत्मा को देखो। और तखत तो बाबा का इतना ऊंचा है, दिल तखत, जिसमें एक दो नहीं सभी समा सकते। तो बाबा ने हमें भाग्य की तीन निशानियां बताई, और ये भाग्य हम सबको प्राप्त है, आत्मस्मृति का तिलक, बाबा का दिल तख्त और जिम्मेवारी का। हर एक बाबा का बच्चा निमित्त जिम्मेवार है, क्योंकि बाबा के बने हम तो बाबा की सेवा, बाबा की याद, इस संसार को पावन बनाना, ये हम सबकी क्या है? जिम्मेवारी है। जिम्मेवारी का ताज अगर होगा तो बाबा कहते सतयुग में आपको रत्न जड़ी ताज भी मिलेगा। यहाँ तिलक होगा तो सतयुग में राज तिलक मिलेगा। यहाँ दिल तख्त नशीन बनेंगे तो बाबा कहते वहाँ राज्य तख्त नशीन बनेंगे। तो भाग्य की तीनों निशानी बाबा हर बच्चे को देते हैं। फिर बाबा कहते मैंने तो सबको दे दिया, लेकिन फिर नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार कौन सा राजा बनना है, सतयुग का, त्रेता का, क्या बनना है, ये फिर बाबा कहते पुरुषार्थ पर है। बाकी बाबा ने भाग्य सबको एक जैसा बांटा, एक ही समय पे बांटा। भाग्य विधाता एक है, भाग्य भी सबको समान देते हैं, पर फिर बाबा कहते सब नंबर वार बनते, क्योंकि पुरुषार्थ सबका क्या है? नंबर वार है। तो हम इतना पुरुषार्थ करें जो भाग्य विधाता ही हमें मिला, और हर चीज की हमें उसने समझ दी है। तो हर कर्म पे हम अटेंशन रखते हैं, हर कर्म पे केवल हमें थोड़ा ध्यान देना है, और जब हम कर्म का अपने कर्म के ऊपर अटेंशन रखते हैं, बाबा की याद रखते हैं, तो अपने आप हमसे कर्म अच्छे, क्योंकि अब हमारी बुद्धि में समझ है। पहले तो क्या था, हम कोई भी कर्म करते थे हमें पता ही नहीं पड़ता था। आप देखो, जब बाबा का ज्ञान नहीं मिला था तो घर में गुस्सा किया या किसकी निंदा की तो हमें क्या लगता था, ये तो सभी करते हैं, इतना गुस्सा तो करना ही पड़ता है, चाहे बच्चों पर चाहे पड़ोसी पर। निंदा करते हैं इधर की उधर तो सोचते ही इतना तो पता होना ही चाहिए, हमें तो पहले ऐसा ही लगता था सबको। लेकिन जब ज्ञान मिला, समझ मिली, तो फिर अब अगर ऐसी कोई बात हो, अगर आपने किसी की दो बुराई भी कर ली, तो आप देखेंगे ज्ञानी आत्माएं, समझदार आत्माएं, कर्मों की गुह्य गति को जानने वाली आत्माएं, अगर आप बाबा की याद में बैठो तो फील होगा कि ये मैंने गलत कर्म किया, ऐसा मुझे करना नहीं चाहिए। ये भी समझ आएगी ये मेरा संस्कार है और अब इससे मुझे ठीक करना है, क्योंकि बाबा ने हमें कर्म की क्या दी समझ। इसलिए कहते कि बाबा ने हमें ज्ञानी तू आत्मा बनाया, और ज्ञानी तू आत्मा प्रभु को प्रिय है, क्योंकि अगर कुछ भी गलती हो जाए, हमसे गुस्सा किया, लेकिन गुस्सा करके क्या मिला। कहते गुस्से की शुरुआत तो मूर्खता से होती है, अंत पश्चाताप से होता है, फिर बाद में पश्चाताप होता है, क्योंकि ज्ञान मिला। जब ज्ञान नहीं था तो पता ही नहीं था, लेकिन अब बाबा ने हमें हर कर्म की नॉलेज दी है, तो हम बाबा के नॉलेजफुल बच्चे हैं। बाबा ने हमें इतना ज्ञान दिया जो बाबा कहते मास्टर ज्ञान सागर बना दिया। इसीलिए कहते हैं कि कर्म हमारे अच्छे हैं। कहते मंदिर में जाते हैं, भगवान के आगे जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, श्रेष्ठ कर्म करने के लिए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, लेकिन अगर हम खुद ही श्रेष्ठ कर्म करें तो हमारा घर ही क्या बन जाता है, मंदिर बन जाता है। हम घर में भी रहते अच्छे कर्म करें तो घर भी मंदिर के समान बन जाता है। इसीलिए बाबा ने हमें भाग्य दिया, हमें भाग्य विधाता मिला, हम बाबा के बन गए, देखो ये भाग्य है। फिर बाबा को हमने दिल से कहा मेरा बाबा, और उसकी श्रीमत पर हम चलने लग गए, तो हम सौभाग्यशाली हो गए। और हमने बाबा के ऊपर बाबा को ये कहा, बाबा मेरा सब कुछ आपका है और आपका सब कुछ मेरा है, हम समर्पण हो गए। कैसे, मन बुद्धि से समर्पण। तो जब हम समर्पण हो जाते हैं, प्रभु अर्पण हो जाते हैं, तो हम पद्मा पदम सौभाग्यशाली बन जाते हैं। इसलिए बाबा कहते भाग्यवान हो, सौभाग्यशाली हो जो श्रीमत को समझ रहे, पद्मा पदम सौभाग्यशाली जो प्रभु अर्पण हो रहे। और उसके लिए बाबा ने ये भी नहीं कहा, परिवार में रहो, कर्म करो, कुछ भी करो, लेकिन जो भी कुछ करते हैं वो करते हुए भी सदा क्या करो, बाबा के आगे कर्म जो भी है वो अर्पण करो, ट्रस्टी बनकर करो। तो ऐसे बाबा ने हमें कर्मों का ज्ञान दिया कि चाहे आपको कोई कुछ भी दे, लेकिन आपको क्या देना है। ये बाबा ने, उसने जो दिया वो उसका कर्म है, पर मैं क्या दूं ये मेरा कर्म है, और मैं उसका लूं या न लूं ये मेरे हाथों में है। किसी ने आपको गाली दी, गुस्सा किया, आपने उसे स्वीकार किया तो आप दुखी हो जाएंगे, उसने दिया ये उसका कर्म, लेकिन मुझे उसे क्या देना है ये मेरा कर्म। तो मैं अपने कर्म को अच्छा बनाऊं, और जब मैं अपने कर्म को अच्छा बनाती हूँ तो वही मुझे लौटकर वापिस आता है। हम क्या सोचते, कई बार हम ये सोचते हैं कि हमारे रिश्ते अच्छे होने चाहिए, हमारा तन भी अच्छा होना चाहिए, हमारे साथी भी अच्छे होने चाहिए, और मधुर संबंध होने चाहिए हमारे आपस में, हम ऐसा सोचते हैं। और जो सामने वाला है वो भी ये सोचता है कि हमारे आपस में रिश्ते मधुर होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। वो भी यही सोच रहा है, हम भी यही सोच रहे हैं, पर करेगा कौन? करेगा कौन? जो करेगा वही नंबर वन बनेगा। तो हमें करना है, ये ऐसा करता है नहीं। चाहते तो हम सभी है, पर कर कौन रहा है? तो बाबा कहते हैं कि हमें करना है, दूसरों को नहीं देखना है, क्योंकि हम देंगे तो हमें मिलेगा। हम ये चाहते हैं कि ये हमें दे, सम्मान दे, प्यार दे, खुशी दे, हम ये चाहते हैं। बुरा नहीं चाहते, अच्छा ही चाहते हैं, खुशी दे। लेकिन बाबा ने क्या कहा? वो दे न दे ये उसका हिसाब है। हो सकता है वो दे भी दे, हो सकता है वो कभी ना भी दे। बाबा कहते वो दे या ना दे, लेकिन आपको सदा देना है, क्योंकि आप दाता के बच्चे हैं। देना ये देवता ही लक्षण है। लेना, बाबा कहते लेना, लेने की भावना देवता नहीं बनना है, हमें तो देवता बनना है। तो देवता बनने के लिए बाबा ने हमें देना सिखाया है। संकल्प से भी देना है, वाणी से भी देना है, कर्म से भी सुख देना है। और जब हम ऐसा देने का भाव रखते हैं, तो बाबा की दुआएं, परिवार की दुआएं और स्वयं स्वयं की भी दुआएं हमें प्राप्त होती है। और ऐसा दुआओं भरा जीवन जिसमें ज्ञान की समझ है, दुआएं है, ऐसा जीवन ही वास्तव में भाग्यशाली जीवन है, जिसको बाबा कहते वही ऊंचा भाग्य है। तो बाबा ने हमारी ज्योति जगाई, बाबा ने हमें भाग्यवान बनाया, और अब हमें उस भाग्य को सदा निरंतर आगे 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 बढ़ाते रहना है। ऐसा कोई कर्म हमें नहीं करना है जिससे हमारे भाग्य को लकीर लग जाए, क्योंकि बाबा मुरली में भी फिर कहते हैं आश्चर्यवंत सुनंती कथंती और संग में आवंती और अहो मम माया भगंती। तो इसका हमें ध्यान रखना है, ऐसे कोई उल्टे सुलटे के संग में नहीं आना है, या ऐसे कोई कर्म नहीं करना है जिससे कि हम बाबा से दूर हो जाए, क्योंकि बाबा हमें सौभाग्यशाली पद्मा पद्म भाग्यशाली बनाने आए। पर ऐसा कोई कर्म न हो जो हमारे भाग्य को लकीर लग जाए, क्योंकि बाबा कहते हैं संगम युग में जो भी करोगे वो सारे कल्प नोंद हो जाएगा, क्योंकि वही फिर रिपीट होगा। इसलिए हम ब्राह्मण हैं, भाग्यवान हैं, ये तो राइट है, लेकिन अब हमें अपने भाग्य को सदा बढ़ाते रहना है, क्योंकि हमें कोई साधारण नहीं। आप देखो, कोई आईएएस का भाग्य बनाता है, कोई डॉक्टर का भाग्य बनाता है, कोई इंजीनियर का भाग्य बनाता है, लेकिन ये भाग्य हमारे भाग्य के आगे साधारण है। साधारण इसलिए है क्योंकि उनकी प्राप्ति अल्पकाल की है, और उनका भाग्य बनाने वाला उनका कोई शिक्षक है, टीचर है, और हमारा भाग्य बनाने वाला स्वयं भगवान है। स्वयं भगवान धरा पर आकर, भाग्य विधाता धरा पर आकर, ब्रह्मा तन में अवतरित होकर हमारे भाग्य को जगा रहे। तो कहते हैं भगवान जब भाग्य बांट रहे थे तो क्या सो रहे थे? बाबा कहते अभी की बात है, अभी बाबा भाग्य बांट रहे, फिर भी मैं मेरापन की अज्ञानता की नींद में कोई सो रहे तो जैसे उनका भाग्य भी सो रहा। और हम वो भाग्यशाली आत्माएं हैं जो हम जग गए, हमें समझ मिली, हमें बाबा मिला और कर्म कैसे करना है ये ज्ञान मिला। इसलिए शिव बाबा हमारे परम पिता भी है, परम शिक्षक भी है, परम सद्गुरु भी है। एक अच्छे पिता जो लायक बनाते हैं। आप देखो, कोई का बेटा है, बाप उस बच्चे के लिए बहुत कमाई करके रखता है, बहुत कमा के रखता है, लेकिन अगर बच्चा अच्छा नहीं तो सारी कमाई खत्म कर देता है। तो अच्छा पिता वो है जो अपने बच्चों को लायक बनाए। अच्छा पिता वो नहीं है जो बहुत धन कमा के रख दे और बच्चे को संस्कार न दे। बाबा ऐसा पिता है जो हमें देता तो सत्ययुग की बादशाही है, जहां सब कुछ है, लेकिन वो देने के पहले बाबा हमें ऐसे कर्म सिखाकर लायक बनाते हैं जो हम उस सतयुग के भाग्य को भी भोग सके। क्योंकि आप देखना, बहुत कुछ मिला पर उसे यूज करना भी तो आना चाहिए। दुनिया में भी देखना, कईयों के पास बहुत धन होता है, हमारे पास भी एक युगल आते हैं, वो बहुत पैसे वाले हैं, बहुत कुछ है, पर उनको पूछते क्यों नहीं आते तो कहते गाड़ी नहीं। हमने कहा गाड़ी तो बहुत है आपके घर में, पर कहते हो बेटे की, हो बहू की, हो पोते की, हमारे पास नहीं। नहीं है तो लो। एक दिन मैंने समझाया, इतना आपके पास है, क्या करोगे? एक गाड़ी ड्राइवर खुद के लिए रखो और उसमें बाबा के घर ही आओ, अपने लिए तो खर्च करो और भाग्य बना लो। बाबा के घर आओ, बाबा की सेवा करो, तो है पर उसे यूज नहीं करते तो भाग्य नहीं बनता। क्योंकि बाबा कहते अगर है तो उसे यूज करना भी आना चाहिए। तो अच्छा पिता बच्चों को बहुत कुछ देता लेकिन साथ साथ लायक भी बनाता है। तो बाबा हम बच्चों को ज्ञान देकर लायक बनाते, योग्य बनाते और फिर हमें सतयुग की बादशाही देते। ऐसे प्यारे बाबा, भाग्य विधाता, नवयुग के निर्माता, हम सब आत्माओं की भाग्य की ज्योति जगाने वाले, हमें कर्मों के गुह्य गति का ज्ञान देते हैं। तो हम सब भी इस मधुबन भूमि में भी आए हैं, तो हम बाबा मिलन में आए हैं, हमें ध्यान रखे। आपस में भी हम भोजन पे जाते हैं, कमरे में रहते हैं, आपस में भी हम जब रहते हैं तो एक दूसरों के मददगार बन के रहे। आज हम खाना भी खाते बाबा के घर माता घर में, हम उतना ही ले जितना जरूरी है। क्योंकि देखो बाबा की पालना तो बहुत ऊंची है, बाबा हमें बहुत कुछ खिलाते हैं, लेकिन हमें वेस्ट नहीं करना है। एक बार हम जब ट्रेनिंग में थी तो हमें याद है दादी प्रकाश मणि जी, हम बहनों को, कुमारियों को बहुत अच्छी पालना। एक बार दादी ने क्या किया, हम सब बहनों को बोला आज आप सबको आइसक्रीम मिलेगी। हम छोटी बहनें थी, सब बहुत खुश हुई और दादी ने कहा जितनी जिसको खानी चाहिए खाओ खाओ, आज खुली छुट्टी है। तो छोटी छोटी बहनें सारी, किसी ने दो खाई, किसी ने तीन खाई, किसी ने एक ही खाई। अब दादी ने आइसक्रीम सबको खिलाई, फिर बुलाया और फिर पूछा अच्छा मीठी बहनों सबने खाई आइसक्रीम? हाँ दादी खाई। अच्छा एक किसने खाई? पहले नहीं, पहले पूछा चार किसने खाई, तीन किसने खाई, दो किसने खाई, फिर लास्ट में पूछा था एक। तो दादी ने कहा कि जिसने भी एक से ज्यादा खाई आसक्ति है। बाबा तो आपको खूब देगा लेकिन आप ध्यान रखना। दादी ने पाठ पढ़ाया कि बाबा देता है इसका मतलब ये नहीं है, हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना है। आज भी मुझे याद आता है कि वास्तव में देखो पहले तो कह दिया खुली छुट्टी है, लेकिन फिर खुद की समझ भी हो ना। तो दादी हमें भरपूर भी करती थी लेकिन साथ में हमें सिखा भी देते थे। ऐसी कई बातें हैं जिससे जीवन में क्या आता है, परिवर्तन आता है। क्योंकि हर एक में कोई न कोई कमी है लेकिन बाबा हमें अनुभवी बनाते हैं, बाबा हमें ड्रामा हमें सिखाता है और हम जैसे जैसे सीखते जाते हैं हमारे कर्म श्रेष्ठ बनते जाते। और सबसे बड़ी बात, बाबा ने हमें ये सिखाया कि जिसके संकल्प श्रेष्ठ है। क्योंकि मेडिटेशन जब हम करते हैं, बाबा को याद करते हैं, तो सबसे पहले याद में क्या करते हैं, हम संकल्प को श्रेष्ठ बनाते हैं। हमारा बीज ही क्या है, बीज ही क्या है, हमारी स्मृति क्या है, मैं शिव बाबा की संतान हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो बीज ही हमारा क्या है, संकल्प। मेडिटेशन क्या करते हैं, हम संकल्प को शुद्ध, और इसीलिए बीज ही श्रेष्ठ बन जाता है तो धीरे धीरे हमारे कर्म में भी श्रेष्ठता आती है। दुनिया में कहेंगे अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो, पर अच्छे कर्म क्या है वो उन्हें पता ही नहीं और वो कैसे किए जाए ये भी पता नहीं। वो सोचते किसी को दान पुण्य कर दिया, खूब दे दिया, अच्छा कर्म हुआ, लेकिन वो करते समय ये सोचते कि मेरे नाम का बोर्ड लग जाए साथ में या लोग मेरी वाह वाह करे, तो कर्म तो अच्छा नहीं हुआ, वो जमा तो नहीं होगा। वो वही उन्हें प्राप्ति हो गई, उनको मान शान मिल गया। और यहाँ बाबा कहते अगर आपको कुछ मिलता भी है मान शान, वो भी बाबा की विशेषताएं है और वो आपका नहीं है, आपके पीछे कई है, आपके बड़े भी है जिन्होंने आप पे मेहनत की है, आपके कई साथी भी है और आपकी विशेषताएं है, इसलिए अभिमान में नहीं आना है। तो बाबा हमें श्रेष्ठ कर्म सिखाते भी कहते सच्चा ज्ञानी वो जो नम्र होता है, जैसे फलों से भरा हुआ वृक्ष झुक जाता है, इसलिए बाबा कहते हैं अच्छे कर्म करने से नम्रता आती है। तो श्रेष्ठ कर्म का बल हम सबको जमा करना है और जब हम ये बल जमा करेंगे तो हमारा भाग्य बढ़ता जाएगा और भाग्य का सितारा चमकता रहेगा और उस भाग्य को देखकर अनेक आत्माएं अपना भाग्य जगाएगी, क्योंकि आप जो भी बाबा के बच्चे हैं, जहाँ भी रहते हैं, आपको देखकर दूसरे सोचते हैं ये इतना खुश कैसे रहते हैं, ये इतनी परिस्थितियों में भी अच्छे कैसे रहते हैं। उसका कारण है बाबा का ज्ञान, बाबा की याद। तो ऐसा भाग्य जो दूसरों का भी भाग्य बनाए और ऐसे भाग्यवान आत्माएं ही सतयुगी दुनिया में फिर बाबा कहते ऊंच पद पाएंगे। तो ऐसे आप सभी भी इस बाबा की धरनी पर आए हैं, हम जितने भी दिन यहाँ रहेंगे हम यही अटेंशन रखेंगे, हर कर्म हमारा उठना बोलना हर कर्म हम बाबा की याद में करें, अच्छा करें, जिससे हमारा भाग्य ऊंचा ऊंचा बनते जाए, क्योंकि कर्म के हिसाब किताब कर्म की गति हम सबको पता है, हम रोज सुनते हैं। तो अब हमें अटेंशन देकर अपने भाग्य को निरंतर बढ़ाना है। ओम शांति। अब हम थोड़ा बाबा की याद में बैठेंगे, थोड़ा सीधा होके बैठे, महसूस करें मैं श्रेष्ठ आत्मा, भाग्य विधाता की संतान हूँ, स्वयं भगवान सुहावने संगम युग पर दिव्य ज्ञान देकर श्रेष्ठ कर्म करना सिखाते भाग्य की ज्योति जगाते आप मुझ आत्मा को भी बाबा की श्रीमत पर चलकर अपने हर कर्म को दिव्य बनाना है। आत्मस्मृति में रहकर बाबा की याद में रहकर हर कर्म करना है।